कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी राधा राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी राधा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यशोदा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यशोदा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी यशोदानंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Jagannath Jai Jagannath Balbhira Jai Subhadra Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada.
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टावतार शिष्य श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भागवतसार की श्रृंखला में पांचवा स्कंद आठवें अध्याय पर आज चर्चा है जिसका शीर्षक है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे, वैसे ये पद्य में नहीं है, गद्य में है, प्रयास करेंगे इसको पढ़ने का। कृपया दोहराइए। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकन कृताभिषेकनैयमेक अवश्यक ब्रह्मक्षरम् अभिगृणानो मुहूर्त्रय उदकांत उपविवेश। खैर इसको हम ही पढ़ लेते हैं। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैमिका आवश्यक ब्रह्माक्षरम् अभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदकांत उपविवेश। श्रीशुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनयमिकाः अवश्यक ब्रह्माक्षरम् अभिगृणानो मुहूर्तत्रयम् उदकान्त उपविवेश जीवों में कोई प्रयास करना चाहिए श्री शुक उवाच। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक बार तू लेकिन महानद्याम गंडकी नामक महानदी में कृत अभिषेक नयमिका आवश्यकः। नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके ब्रह्मक्षरम प्रणव मंत्र ओम का अभिग्रणानः जप करते हुए मुहूर्त त्रयम 3 मुहूर्त तक उदक अंते नदी के तट पर उपविवेश बैठ गए। अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक शौचादि कृत्यों से निवृत्त होकर महाराज भरत कुछ क्षणों के लिए गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओंकार से प्रारंभ होने वाले अपने मंत्र का जप करने लगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्विमुखेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहरा लेंगे। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचो चतः कर हानमुंच कदाचिन् माम प्रेम्णा हृत्कंठयोस्वुरा। ऐसे प्रार्थनाएं सबको गानी चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि रोज गाते हैं तो ये तो मुझे पता है। ये गाइए क्योंकि ये प्रार्थना सनातन गोस्वामी कर रहे हैं कि भागवत से कि मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। तो अगर आप लोग नहीं गाएंगे तो भागवत समझ नहीं आएगी, इसलिए प्रार्थना कर लिया करिए, ठीक है। तो ये अध्याय है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय भक्तों के लिए है। शिला प्रभुपाद इसको लिखते हैं तात्पर्य में। वैसे तो देखने में पढ़ने में बहुत साधारण अध्याय है, 31 श्लोक हैं केवल, और इन श्लोकों में बस यही बताया गया कि कैसे भरत महाराज एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए और फिर उसके साथ ही रहने लगे, उसका ध्यान रखने लगे, और फिर धीरे धीरे उससे इतने आसक्त हो गए कि मृत्यु के समय उन्होंने उसका स्मरण किया और फिर अगले जन्म उनको एक हिरण का लेना पड़ा। बस इतना ही अध्याय है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण संदेश इसमें हैं कि हर भक्त को बड़े ध्यान से इस अध्याय को पढ़ना और समझना चाहिए। इस अध्याय के पहले हम लोग देख चुके हैं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भरत महाराज भाव स्तर के भक्त थे। जैसे श्लोकों में वर्णन किया गया उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं भगवान का नाम लेते हुए, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए, तो भाव स्तर के भक्त थे। लेकिन भाव स्तर के भक्त होते हुए भी तुरंत यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि किस प्रकार उनका पतन हो गया भक्ति मार्ग से। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मन में आता है कि क्या भाव स्तर पर पहुंचे हुए भक्त का भी पतन हो सकता है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग तो अभी श्रद्धा के स्तर पर हैं, प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे कुछ भजन क्रिया करके अनर्थ निवृत्ति करने का, लेकिन भरत महाराज सब कुछ त्याग कर पूर्ण वैराग्य की भावना से केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए ऐसी भक्ति का मार्ग का पालन कर रहे थे और ऐसे स्तर पर पहुंच चुके थे, फिर भी उनका पतन हुआ। उन भरत महाराज का जिन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए, वन में चले आए, सारी सुविधाओं को त्याग दिया अकेले वन में रहकर तपस्या करने लगे, कंदमूल खाते, सारे राजसी ऐश्वर्य को त्याग दिया, उन भरत महाराज को एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। जिसने सब कुछ त्याग दिया है कैसे उसको एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो सकती है? तो क्यों भगवान ऐसे करते हैं? तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले ये जान लें कि भरत महाराज के साथ ऐसा क्यों हुआ। हुआ ये हम जानते हैं, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन क्यों हुआ, क्या कारण था? तो इस प्रसंग के कई कारण हैं। पहला कारण, भगवान एक चेतावनी देना चाहते हैं। भरत महाराज जैसे श्रेष्ठ भक्त का उपयोग करके भगवान एक चेतावनी देना चाहते हैं कि कभी भी भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब मैं बहुत बड़ा हो गया, अब मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया। तो ये भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए, अर्थात कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे कभी कभी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो अन्य लोगों को चेतावनी देने के लिए होती है। जैसे आप सब ने सुना है कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध दुर्घटना हुई टाइटैनिक जहाज की। टाइटैनिक जहाज डूब गया। जहाज बनाने वालों ने घोषणा की थी कि इस जहाज को भगवान भी डुबा नहीं सकते। पहली बार में डूब गया, पूरा खत्म। खैर उन्होंने चुनौती भगवान को दी थी, गलती की थी उन्होंने। तो भगवान ने दिखलाया, बताइए इतना अच्छा अगर जहाज बनाया हो, सारी उसकी सब कुछ उन्होंने बड़ी अच्छी सुविधा की थी, ये जहाज डूब ही नहीं सकता। लेकिन फिर पहली बार में डूब गया। भगवान ने चेतावनी दी कि अपने छोटे से बुद्धि से जो आप थोड़ी बहुत चीजों का निर्माण कर लेते हो, ये मत सोचो कि मेरे द्वारा की गई निर्माण चीजों से वो श्रेष्ठ हो गई। आप तो छोटा सा शिप बना रहे हो, समुद्र तो मैंने बनाया हुआ है। तो वो छोटा सा शिप, छोटा सा जहाज टाइटैनिक पहली बार में डूब गए, सारी सुरक्षा की सुविधाओं के बावजूद। भगवान ने चेतावनी दी हर एक के लिए कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए। इसी तरह ये एक दुर्घटना, ऐसी कई दुर्घटनाएं हम शास्त्र में देखते हैं। भक्ति करना चाहते हैं लेकिन प्रसिद्ध विश्वामित्र बेचारे कहाँ विवाह करने गए थे, वो तो अपना परिवार त्याग कर गए थे, उनकी पुत्र इत्यादियों को मार दिया गया था, मर रहे थे युद्ध में, वो सब छोड़कर चले गए थे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। लेकिन दुर्घटना, मेनका से आसक्त हो गए। दूसरी दुर्घटना, रंभा से आसक्त हो गए। सौभरी मुनि सब कुछ छोड़कर पानी में चले गए नीचे, कुछ नहीं देखूंगा भी नहीं इस भौतिक जगत को, दुर्घटना। तो ऐसी कई दुर्घटनाओं का वर्णन है ये हमें चेतावनी देने के लिए। तो पहला कारण भरत महाराज के पतन का है कि भगवान चेतावनी दे रहे हैं हम सबको, सावधान रहिए, भक्ति में सावधान रहिए। कभी भी ऐसा मत सोच लीजिए कि बस 20 साल हो गया ब्रह्मचारी हुए हुए, सन्यासी हो गया, दंडा हाथ में आ गया, कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत कुछ होता है, तो हम लोग सब देख रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति को ये चेतावनी भगवान की क्या है, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार ऊंचे रस को ले लेता है फिर वो निचले रस की ओर ध्यान नहीं देता या जाता नहीं है, परम दृष्टवा निवर्तते। लेकिन फिर ऐसा कैसे होता है कि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाता है और फिर भी उसका पतन हो जाता है, फिर से वही उन्हीं कार्यों में लगता है? तो उसमें चेतावनी क्या है, ऊंचे रस को लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक बार ऊंचा रस ले लिया खत्म, ऊंचे रस को लेते रहना चाहिए, नहीं तो माया इतनी प्रभावी है कि वो नीचे रस की ओर खींच देती है। तो ये चेतावनी देने के लिए भरत महाराज की लीला भगवान ने की, भगवान ने उपयोग किया अपने शुद्ध भक्त का। जिनको स्वयं भगवान ने कहा कि ये भक्त हैं, इनका पालन करो। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, सारे पुत्रों से, कि सब भरत का पालन करो क्योंकि वो महान भक्त है। तो जिनको स्वयं भगवान ने कहा हो उनका पतन हो गया, भगवान ने उपयोग किया हमें चेतावनी देने के लिए, सावधान रहिए भक्ति में। तो भक्ति में हर क्षण बहुत सावधानी से हमें रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं सुरक्षित हूँ, अब माया मुझे छू नहीं सकती। बड़ी जोर से थप्पड़ पड़ेगा उसी समय। दूसरा कारण इस लीला का, भगवान इसके द्वारा भक्तों के संग के महत्व को दर्शा रहे हैं कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। भरत महाराज अकेले थे, कोई नहीं था। जिस समय ये दुर्घटना उनके साथ हुई, जिस समय उनकी आसक्ति बढ़ रही थी, जिस समय वो हिरण को लेकर आ रहे थे, कोई था नहीं उनको कहने वाला कि प्रभु थोड़ा संभल जाओ, ठीक है दया कृपा होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप जप करना छोड़ दो, सारा ध्यान उस पर। वर्णन आएगा इसमें, भरत महाराज इतने आसक्त हो गए थे कि पूजा करते करते उधर ध्यान देते थे, जैसे पुजारी आरती कर रहा है और ध्यान दे रहा है कहाँ गया हिरण है कि नहीं है, और कभी नहीं दिखता था तो बंद कर देते थे और ढूंढने चले आते थे। मतलब ये सोचिए कि पुजारी ऑल्टर में या भरत महाराज खड़े हुए ऑल्टर में आरती कर रहे हैं, उन्होंने घूम के देखा, दिखा नहीं, बंद की आरती, आए ढूंढने कहाँ गया हिरण, कहाँ गया, हाँ है ठीक है, फिर गए और आरती करने लगे। ये लिखा है शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। तो अगर भक्तों का संग होता तो स्वाभाविक है जैसे ही आरती छोड़कर जाते तो अथॉरिटी उनकी बोलती, भाई कमांडर आप क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, चलो आरती करो। या ज्यादा हिरण को लेकर घूमते तो कोई, वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हिरण को इस्तेमाल किया। हिरण को अंग्रेजी में डियर कहते हैं, और हम सबके भी बहुत सारे डियर होते हैं, डी डबल ई आर नहीं, डी ई ए आर, हम सबके भी बहुत सारे डियर होते हैं ना, डियर वाइफ, डियर चिल्ड्रन, डियर पेरेंट्स, डियर फ्रेंड्स, डियर डियर डियर। तो भरत महाराज, ये उदाहरण है कि भरत महाराज के लिए एक ही डियर काफी था, हमारे तो इतने सारे डियर हैं, कितना सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। तो ये दूसरा कारण भरत महाराज के पतन का, कि कोई भक्तों का संग नहीं था। भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि ये एक आपकी सुरक्षा की दीवार है। जैसे खेत में जब लगाया, जैसे हम लोगों ने यह गार्डन लगाया तो हमने उसको जाली से बंद करके रखा है कि कोई चला नहीं जाए, कोई पशु वहाँ जाके उसको खराब नहीं करे। तो ये जो जाली है ये बड़े से बड़े पशु को भी रोक रही, पशु देखता जाली है नहीं जा रहा। इसी तरह जो भक्तों का संग है ये हमारे लिए सुरक्षा की दीवार है। अगर हम इसके अंदर रहेंगे हमेशा तो हम सुरक्षित हैं माया के आक्रमणों से। लेकिन अगर हमने इस सुरक्षा को खो दिया तो फिर कोई लाभ नहीं है। जीवन में धन चले जाना कोई बड़ा हानि नहीं है, कोई प्रियजन के चले जाना कोई बड़ी हानि नहीं, वो तो वैसे भी जाने वाले, धन वैसे भी जाने वाला, धन इत्यादि जो हमें मिलता है और जो जाता है, सुख दुख, ये तो केवल कर्म से होता है। भागवत में कहा गया है, पहले ही स्कंद में पांचवें अध्याय में कहते हैं, तल्लभ्यते, जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख भी मिलने वाला है, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो भक्तों का संग हमारी सुरक्षा है, तो इस सुरक्षा को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी हानि है भक्तों के संग का चले जाना, तो इसलिए इस हानि से घबराना चाहिए व्यक्ति को। बाकी कोई हानि से घबराना नहीं चाहिए, पैसा चला गया ठीक है फिर आ जाएगा, लेकिन अगर भक्तों का संग छूट गया तो फिर कई कई जन्म हमें जीवन लेने पड़ेंगे। इतना महत्वपूर्ण है ये भक्तों का संग, सुरक्षा है। जैसे हम पशुपालन करते हैं, गोपालन करते हैं, तो गायों को एक सुरक्षा की दीवार में अंदर रख देते हैं, तो कहीं गाय जा नहीं सकती, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई लेके नहीं जाता। ऐसे ही ये भक्तों की, जो भक्तों का संग है ये सुरक्षा है हमारे लिए। हम आराम से रहते हैं, जैसे हम लोग इस देश में आराम से घूमते हैं। क्यों? हमारी सेनाएं सुरक्षा कर रही हैं सीमाओं की, इसीलिए तो आराम से घूम रहे हैं हम लोग इस देश में। तो इसी तरह हम आराम से भक्ति कर पाएंगे अगर भक्तों की सेना सुरक्षा करेगी हमारी। और ये जान लीजिए कि भक्ति में इस भौतिक जगत में कोई सुरक्षा नहीं है। क्या सुरक्षा है इस भौतिक जगत में? लेकिन एक ही सुरक्षा है हमारी कि हम भक्तों के अधीन रहें, क्योंकि भक्तों की शक्ति हमें भगवान की जो माया शक्ति है उससे बचा सकती है। क्योंकि भक्त शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो माया से श्रेष्ठ है, जीव माया से श्रेष्ठ है और भक्त उस स्तर पर है। और जैसे हमने कल भी बताया था कि भक्त और भगवान एक समान होते हैं, तो इसीलिए भक्तों का संग चाहिए। और ये दूसरा कारण था भरत महाराज के पतन का। तीसरा कारण भरत महाराज के पतन का है कि भगवान दिखलाना चाहते हैं, नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये दिखलाने के लिए उन्होंने भरत महाराज को इस स्थिति में डाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही भरत महाराज इस आसक्ति में इसमें पड़े और उनको फिर से एक शरीर लेना पड़ा, लेकिन उस शरीर में भी उनको अपने पूर्व जीवन का स्मरण भगवान ने दिया, उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ और वो बने रहे। और फिर उन्होंने अगले जन्म में क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगले जन्म में उन्होंने किया जो इस जन्म में उन्होंने नहीं किया। अगला जन्म जब उनका हुआ एक हिरण के रूप में, तो जहां भी जिस पर्वत पर उनका जन्म हुआ था तुरंत अपनी माता को छोड़कर फिर से वो भक्तों के संग में आए, ऋषि मुनियों के साथ घूमने लगे, पुलह आश्रम वापस आए। तो जो गलती उन्होंने पहले की थी भक्तों के साथ नहीं रहे, तुरंत उस शरीर में किया। चेतना को बनाए रखा भगवान ने, ये भगवान की कृपा है। जब भगवान कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कभी मरेगा ही नहीं, मेरे भक्त को कभी रोग नहीं आएगा, मेरा भक्त कभी बूढ़ा नहीं होगा, ये नहीं। नमे भक्त प्रणश्यति मतलब मेरे भक्त की जो शुद्ध चेतना है जो मुझ में लगी है उससे वो कभी दूर नहीं जाएगा। इसको कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। शरीर तो नाशवान है, शरीर का नाश होगा। हम लोग देखते बड़े बड़े आचार्यों के शरीर यहीं रह गए, आचार्य चले गए, शरीर नाशवान है, लेकिन चेतना ये शाश्वत है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और ये दिखलाने के लिए भरत महाराज की कथा है कि भले ही उनको आसक्ति हो गई, पतन हो गया, पूर्ण रूप से उन्होंने भगवान की भक्ति करना भी बंद कर दिया, केवल हिरण से आसक्त, मरते समय भी हिरण से आसक्त, लेकिन भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा, भगवान ने उनकी चेतना को बनाए रखा और अगले जन्म में फिर अवसर दिया उनको भक्ति करने का। तो ये तीसरा कारण है भरत महाराज के पतन का। और चौथा कारण प्रभुपाद देते हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भरत महाराज की प्रसंग है, उनके पतन का प्रसंग, ये हर भक्त को शिक्षा देने के लिए है कि कैसे हृदय में वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए। कथा है आसक्ति की, प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त को सीखना चाहिए भरत महाराज से कैसे वैराग्य उत्पन्न करना है हृदय में, कैसे अनासक्ति लानी है हृदय में। अर्थात कभी कभी गलत चीजों को देखकर हमें सही चीज को सीखना होता है, पाप को देखकर पापों से दूर रहना सीखना होता है। तो इसी तरह भरत महाराज की आसक्ति और उसका परिणाम देखकर उससे दूर रहना हमें सीखना है। तो ये चौथा कारण है भरत महाराज के पतन का, जो पतन की लीला हुई उनके, तो इसीलिए ये हुई। और ये लीला भी जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, कैसे हुई अब हम लोग इस अध्याय पे चर्चा करेंगे, कैसे ये लीला हुई और कैसे कैसे भक्त को संभालना चाहिए। ये भक्त के जीवन के लिए, मान लीजिए भक्त का भक्ति का जीवन है, और विशेषता क्यों ऐसा है, क्योंकि प्रभुपाद कई तात्पर्यों में लिखते हैं इस्कॉन में आए हुए भक्तों को इससे सीखना चाहिए, इस्कॉन में आए हुए भक्त को ये करना चाहिए। अर्थात ये जो सारा जीवन है भरत महाराज का जीवन, अर्थात प्रमुख ये प्रसंग, अब ये हमें समझाएगा कि हमें भक्ति में कैसे सावधान रहना चाहिए, कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं और कैसे उसको ठीक करना चाहिए। तो भरत महाराज पहले 7 श्लोकों में वर्णन है कि कैसे भरत महाराज इस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में लेकर आते हैं। तो एकदा, जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें कि एक बार गंडकी नदी के तट पर वो बैठे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती थी वहाँ पानी पीने के लिए आ गई। वो जैसे ही जल पी रही थी तो उस समय अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी, घबरा गई। अब तो पानी में थी, अब पीछे कहाँ भागती, तो पानी को पार करने के लिए नदी में चली गई। और जब पार कर रही थी तो उस समय वो पार तो कर नहीं पाई, पार करते करते गई लेकिन भय भय से थी, आगे जाकर पार किया, एक गुफा में जाकर मर गई। लेकिन उसका जो बच्चा था उसने जन्म दे दिया उस बच्चे को, और वो बच्चा पानी में था। अब भरत महाराज ने इसको देखा, और स्वाभाविक है एक भक्त का हृदय बड़ा कोमल होता है, तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे का अब क्या होगा, माँ चली गई, वो मर गई, अभी अकेला बच्चा, इसको कौन संभालेगा, शेर खा जाएगा, कोई हिंसक प्राणी खा जाएंगे। तो भरत महाराज ने जाकर उसको उठाया और उसको लेकर अपने आश्रम में आ गए, ये सोचकर कि मुझे इसका ध्यान रखना है। ये पहली गलती थी भरत महाराज की। इसे कहते हैं गलत जगह पर करुणा दिखलाना, मिसप्लेस्ड कंपैशन, जो अर्जुन दिखला रहा था। अर्जुन भी भगवान को जब ये कह रहा था कि युद्ध नहीं करूंगा, तो वो करुणा दिखला रहा था कि कैसे मैं मार सकता हूं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे भाई हैं, और फिर किस लिए, केवल भूमि के थोड़े से टुकड़े के लिए मैं मार दूं इन लोगों को, नहीं। वो तो ये भी कहता है कि ठीक है, भले वो लोग मुझे आकर मार दें, मैं निहत्ता खड़ा रहूंगा, और ये धृतराष्ट्र के पुत्र आकर मुझे मार दें, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं मारूंगा उनको, करुणा। तो ये गलत जगह पर दिखाई गई करुणा है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके कोट को आप पकड़ कर ले आए, कोट को बचा लें और व्यक्ति को डुबा दें, ये इस तरह की करुणा है। शरीर के प्रति दिखाई गई करुणा, ये इस तरह की करुणा है। तो भरत महाराज ने ये करुणा दिखलाई, हालांकि वो भक्ति के मार्ग पर लगे हुए थे, श्रवण कीर्तन कर रहे थे, भक्ति की अन्य क्रियाओं को कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये गलत कार्य किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शरीर के प्रति करुणा ये सच्ची करुणा नहीं है। तो जब हम लोग भी भक्ति करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये पतन की शुरुआत हो जाएगी हमारे, अगर हमने ये करुणा गलत जगह पर दिखा दी, सच्ची करुणा नहीं दिखाई। प्रभुपाद कहते हैं सच्ची करुणा है व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करना। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ये हिरण तो कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता था, वो तो जानवर था, उसके प्रति इतनी करुणा दिखाने का क्या लाभ है। तो इसका अर्थ ये है कि पहले भक्त जब भक्ति में लगा होता है, धीरे धीरे भक्ति का पालन करता है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, हृदय में करुणा आती है, लेकिन ये सच्ची करुणा होनी चाहिए। और सच्ची करुणा है अगर इसी के हृदय में, तो उसे प्रचार करना चाहिए। प्रचार ये करुणा का मूर्तिमान स्वरूप है। अगर किसी के हृदय में करुणा नहीं है तो वो प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता, प्रचार केवल अच्छे अच्छे शब्द बोलने से नहीं होता, प्रचार हृदय में करुणा से होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद की थी। जब वो देखते थे पाश्चात्य जगत में लोग बड़े पापमय कार्यों में लगे हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आते थे, ये देखकर कि मनुष्य जीवन मिला है लेकिन कैसे ये बर्बाद कर रहा है इसे, ये करुणा है। और प्रभुपाद ने उस करुणा के चलते सच्ची दृष्टि से करुणा दर्शाई और प्रचार किया। उन्होंने जाकर उनके शरीरों को नहीं बचाया, उनको कुछ भोजन कुछ कपड़ा लत्ता नहीं दिया, सही दृष्टि में करुणा उनको आध्यात्मिक प्रगति कराई, प्रचार किया। इसलिए हर भक्त को प्रचारक होना चाहिए, अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए हमें प्रचार करना चाहिए। ये सच्ची करुणा है लोगों को कृष्ण से। हम कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, हम प्रवचन नहीं दे सकते, हम डीटी वर्शिप नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को मंदिर तो ला सकते हैं, बस ये करुणा है। आपके अंदर शक्ति नहीं है, ठीक है, आप उनको उनके पास ले जाइए जो उसको प्रचार कर सकते हैं। भगवद गीता में तात्पर्यों में प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, प्रभुपाद लिखते हैं कुछ नहीं कर सकते तो जो प्रचार कर रहे हैं उनको मदद करें, इतना तो कर सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को प्रचारक होना चाहिए। आप एक व्यक्ति को बोलिए आप मंदिर आइए, रविवार को कार्यक्रम होता है मंदिर में, ऐसे कार्यक्रम है, जन्माष्टमी है, ये प्रचार है। जब हम लोग घर घर कुछ दान मांगने भी जाते हैं वो भी प्रचार है। क्यों? क्योंकि हम उनको कुछ देते हैं कि ये जन्माष्टमी है, आप आइए थोड़ा भगवान की सेवा कीजिए, ये भी प्रचार है। हर एक व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार प्रचारक बनना अनिवार्य है, क्योंकि उसके द्वारा हम करुणा को लोगों तक पहुंचाते हैं। मंदिर को साफ रखना प्रचार है। अगर कोई केवल रोज मंदिर साफ कर रहा है वो अच्छा प्रचारक है। क्यों? क्योंकि जब लोग मंदिर आते हैं तो देखते हैं कितना साफ सुथरा मंदिर है, उनको फिर से आने की प्रेरणा होती है। अगर वो लोग आए और बड़ा गंदा मंदिर रखा हो, अल्टर गंदा हो, सब जाले लगे हुए हैं, धूल बैठी हुई है, तो कोई सोचेगा जब ये लोग भगवान के ही ध्यान इतना नहीं रखते हैं तो फिर हमारा क्या रखेंगे, तो उसको आने की प्रेरणा नहीं होगी। इसलिए मंदिर को साफ रखना ये प्रचार है, अच्छा प्रसाद बनाना ये प्रचार है। लोग प्रसाद के लिए तो आते ही हैं, है ना? आप नया कोई कार्यक्रम कीजिए, अनाउंस कीजिए 6:30 बजे कार्यक्रम होगा, तो कुछ लोग ठीक 8 बजे पहुंच जाते हैं, 8:15 बजे, है ना? कोई बात नहीं, कम से कम प्रसाद के लिए तो आते हैं, वो भी तो भगवान का रूप है। तो इसीलिए हर एक को प्रचार करना चाहिए, ये सच्ची करुणा है। तो केवल शरीर को बचाना, शरीर के लिए कार्य करना, ये सच्ची करुणा नहीं है। उसको भगवान से जोड़ना चाहिए। जैसे कई बार हम कहते हैं कि बाहर के जगत में लोग कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो उन मूर्खों को कहना चाहिए कि मानव सेवा माधव सेवा तो तब होगी जब मानव को माधव से जोड़ोगे, माधव को निकाल के मानव सेवा माधव सेवा कैसे हो सकती है। इसीलिए मानव को माधव से जोड़ना ये सच्ची माधव सेवा है। तो हर एक को प्रचार। तो यहां पर भरत महाराज ने करुणा दिखलाई उसके प्रति, जो गलत करुणा थी, सच्ची करुणा नहीं थी, ले आए अपने आश्रम में उठाकर, और फिर उसके बाद आसक्त हो गए। और ऐसा वर्णन है कि क्योंकि व्यक्ति जब गलत करुणा दिखलाता है तो ऐसी गलत करुणा उसको भौतिक स्तर पर ले आती है, आध्यात्मिक स्तर से नीचे आ जाता है, शरीर देखता है, देह के ऊपर कार्य करता है, और फिर ऐसी स्थिति में आसक्ति बढ़ती है। तो अब भरत महाराज की आसक्ति बढ़ गई इस हिरण के बच्चे से, बहुत ध्यान रखने लगे, बार बार क्या कर रहा है, इतना तक वर्णन है कि उसके साथ सोते थे, उसके साथ खाते थे भरत महाराज, इतनी आसक्ति। ठीक है कोई पशु है, होती है आसक्ति, लेकिन इतनी कि सब कुछ उसी के साथ कार्य कर रहे हैं, और कहीं वो अगर कुछ क्षण के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो हाय हाय, भरत महाराज तो विलाप करने लगते थे, कहाँ चला गया, क्या हो गया। तो ऐसी आसक्ति उनकी बढ़ गई। तो ये दूसरा स्तर है कि जब हम भक्ति में लगे होते हैं और सही दृष्टि से प्रचार नहीं करते हैं तो हमारी आसक्ति बढ़ जाती है भौतिक चीजों में, क्योंकि हम भगवान को दे नहीं रहे हैं लोगों को, तो हमारी भौतिक चीजों में आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे भरत महाराज की एक हिरण के प्रति, हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ गई, और आसक्ति बढ़ने से क्या हुआ, भरत महाराज अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं की ओर ध्यान नहीं देने लगे, भक्ति की ओर ध्यान नहीं देने लगे, भगवान की पूजा की ओर ध्यान नहीं देने लगे, जप की ओर ध्यान नहीं दिया उन्होंने उसको। जैसे हमने बताया पहले भी कि पूजा करते होते ध्यान रहता कि कहाँ गया, और नहीं दिखता तो आधा छोड़कर चले जाते। जैसे मान लीजिए जप कर रहे हैं इधर उधर, और जप में भी ध्यान किसका ठीक है कि नहीं, हिरण दिख रहा है कि नहीं, तो ये आसक्ति आध्यात्मिक क्रियाओं के प्रति एक उसको भूल जाना या उसके प्रति एक उदासीनता का भाव प्रकट कर देती है। व्यक्ति ध्यान नहीं देता, फिर उसका ध्यान नहीं रहता आध्यात्मिक क्रियाओं पर। तो ये देखिए हमारे पतन का, ये जैसे जैसे भरत महाराज का पतन हो रहा है, भक्ति में हम भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो क्योंकि हम प्रचार नहीं करते, गलत दृष्टि से करुणा दिखलाते हैं, आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ने से, जब हमारी आसक्ति इतनी हो जाती है, तब हम अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को ठीक से नहीं कर पाते, जैसे भरत महाराज नहीं कर पाए उन क्रियाओं को। उनका पूरा ध्यान केवल हिरण पे रहता था। और फिर जब उन्होंने इस तरह से आध्यात्मिक क्रियाओं की ओर ध्यान देना बंद कर दिया, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई उनके हृदय में, ये आया कि इस हिरण को शरण देने वाला और कोई है ही नहीं। अगर मैंने इसके लिए नहीं किया तो कौन करेगा। तो भरत महाराज अपने आप को कृष्ण मानने लगे, क्योंकि शरण तो केवल कृष्ण दे सकते हैं, और कौन इस जगत में शरण दे सकता है, किसी की शक्ति शरण देने की, आश्रय देने, आश्रय प्रदाता केवल कृष्ण है। लेकिन जब भक्त आध्यात्मिक क्रियाओं में कमजोर हो जाता है, तो अपने आप को कर्ता और आश्रय प्रदान करने वाला मानने लगता है। ये झूठा, ये जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, जीव है, ये झूठा पुरुष, पुरुष यानी भोक्ता, तब वो भोक्ता बन जाता है। तो भरत महाराज सोचने लगे कि मेरे सिवा कौन है इसका। और फिर वो कह, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो ऐसे कहने लगे कि अगर कोई संन्यास की अवस्था में भी है तो भी उसको करुणा करना नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे मैं इसको, जीव को छोड़ सकता हूं, इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। अर्थात भरत महाराज असली कर्तव्य भूल गए। उनका कर्तव्य ये नहीं था, अगर ये कर्तव्य जब तक था जब वो राजा थे तब उनका कर्तव्य था प्रजा का ध्यान रखना, आज उनका वो कर्तव्य नहीं था। वो कर्तव्य वो दे चुके हैं दूसरे को, अपने कर्तव्य को भूल गए। असली कर्तव्य भगवान की प्राप्ति, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा था। और यही हम सब करते हैं। प्रभुपाद चेतावनी देते हैं इस्कॉन के भक्तों को कि हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम उद्देश्य को भूल जाएंगे, हम किस लिए आए हैं। जब व्यक्ति अपने आप को आश्रय प्रदाता मानने लगता है, अर्थात कृष्ण पर विश्वास नहीं है, वो ये विश्वास करने लगता है कि मैं ही सब करने वाला हूं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम मिति मन्यते, भूल जाता है करने वाले आश्रय देने वाले भगवान हैं, हम लोग तो निमित्त हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जैसे एक ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है, उसके हाथ में कैंची होती है, अब वो कैंची से ऑपरेशन करता है, सुई धागे से उसको सिलता है, तो क्या कैंची और सुई धागे को अहंकार होना चाहिए कि इस व्यक्ति का जीवन मैंने बचाया है। अगर मैं नहीं होती तो कैसे बचता, ये कैंची नहीं होती, सिलने के मार्ग नहीं होते तो कैसे बचता, तो क्या ये अहंकार होना चाहिए। नहीं, कैंची का क्या मूल्य है। कैंची की उपयोगिता तो तब है जब वो एक डॉक्टर के हाथ में है, नहीं तो उसी कैंची को बच्चे के हाथ में दे दीजिए, वो तो सारी चीजें काट देगा, क्या उपयोगिता है उसकी। इसीलिए हमें चलाने वाला श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ नहीं है, इस चीज को भूल जाता है व्यक्ति। भगवान श्रेष्ठ हैं और वो हमें केवल चला रहे हैं, हमें घुमा रहे हैं। तो इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हमें भौतिक सुविधाओं से आसक्त नहीं होना चाहते हम लोग, ऐसी स्थिति में रहें जहां भौतिक सुविधाएं हमें आकृष्ट नहीं करें, भक्ति से दूर नहीं ले जाएं, तो हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। अगर व्यक्ति सदैव इस चीज को याद रखे कि सब कुछ श्री कृष्ण का है, कभी भौतिक सुविधाओं से आसक्त नहीं होगा। भक्ति में बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए भौतिक सुविधाएं बहुत मिलती हैं, लेकिन उनसे आसक्त हो जाना अर्थात ये भूल जाना कि सब कुछ श्री कृष्ण का है। तो इसलिए ये पतन की अगली सीढ़ी है। एक एक सीढ़ी नीचे आ रहे हैं भरत महाराज, एक एक सीढ़ी हम लोग नीचे जा रहे हैं। देख लीजिए कि भक्त ये सोचने लगता है कि अब तो मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही करता हूं, मैं ही इनको आश्रय दे सकता हूं, भूल जाता। तो भरत महाराज ये सोचने लगे कि अगर मैंने नहीं किया तो कौन इसे खिलाएगा, कौन इसका ध्यान रखेगा, कौन ऐसे हिंसक पशु हैं वो खा जाएंगे। और कभी अगर वो कहीं चला जाता, आंखों से ओझल हो जाता, तो भरत महाराज इतना दुख करते, इतना विलाप करते कि हाय शायद मैं उसकी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया, शायद उसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा। इतना प्रेम, और इतना ही नहीं, जब वो चला गया तो भरत महाराज अपने आश्रम के बाहर आए और उन्होंने उसके चिन्ह देखे, पांव के चिन्ह, और उन पांव के चिन्हों को देखकर वो कहने लगे कि मैं भाग्यवान नहीं हूं, ये धरती भाग्यवान है कि जिसके ऊपर इस हिरण के बच्चे के पांव के चिन्ह पड़े, कितनी भाग्यवान है धरती, बताइए। धरती को भाग्यवान बना दिया उन्होंने, किसके चिन्ह पड़े, हिरण के बच्चे के। इन चिन्हों को देखकर बड़े बड़े योगी मुक्त हो सकते हैं, भरत महाराज कहते हैं, जैसे वो मानो कृष्ण के चरण चिन्ह हो। अब प्रभुपाद लिखते हैं ये ब्लाइंड लव है, अंधा प्रेम। इस जगत में लोग कहते हैं ना प्रेम अंधा होता है, वो सही में अंधा होता है, कुछ देखता नहीं प्रेम में आदमी, प्रेम क्योंकि है नहीं। प्रेम अंधा नहीं होता है, इस जगत का प्रेम अंधा। वैसे तो शुद्ध प्रेम अंधा नहीं है, शुद्ध प्रेम में तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता। शुद्ध प्रेम जागृत ही तब होता है जब व्यक्ति स्पष्ट देख सके, जब जान सके सही चीजों को, कौन क्या है, जब उसको ज्ञान हो जाए, वो सच्चा प्रेम है। लेकिन इस जगत के लिए जो कहा जाता है एकदम सही है, इस जगत का प्रेम अंधा है। अंधा है मतलब ये कि व्यक्ति क्या बोल रहा है वो भूल जाता है। भरत महाराज जो भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो चरण के चिन्हों को, पैर के चिन्हों को देखकर एक हिरण के ये कह रहे कि धरती बड़ी भाग्यवान है और जो इनको देखेगा वो मुक्त हो जाएगा इत्यादि। बताइए, ये है अंधा प्रेम। तो जब हमारी आसक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आसक्ति की पराकाष्ठा की ओर जा रहे हैं, तो जब हम लोगों की आसक्ति बहुत बढ़ जाती है तो हम सही चीजों, सही दृष्टि से चीजों को देख नहीं पाते। फिर हमारे लिए लगता है स्वजन पालन कोरी एक मने भूली नु तुम्हारे हरि, कि बस स्वजन का पालन करना, शरीर का पालन करना, भोगों में लगना, यही जीवन है। उनको बताया जाए, जब कष्ट होते हैं जीवन में वो आके प्रश्न करते हैं, उस समय उनको स्वामी जी दिखाई देते हैं, उस समय उनको भगवान दिखाई देते हैं। किस लिए? प्रश्न करने के लिए, जीवन भर मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मूर्ख व्यक्ति भूल जाता है कि रोज मांस खाता है, रोज शराब पीता है, रोज जुआ खेलता है, चारों खंभों को पाप के बनाए रखा हुआ है और कहता है कि मेरे साथ क्यों गलत हो रहा जीवन में। तो ये आसक्ति है, ये प्रेम अंधा प्रेम है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि इस जगत में ऐसा प्रेम होता है, एक युवक युवती के प्रति आकर्षित हो जाता है, उसको लगता है बस अगर वो नहीं मिली, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर वो प्रेम था और विवाह नहीं हुआ तो आत्महत्या, बताइए, और विवाह हो गया तो तलाक विवाह नहीं हुआ तो आत्महत्या, विवाह होने के बाद तलाक। ये भौतिक जगत है, इसलिए इसमें प्रेम नहीं है, इस जगत में केवल समझौता है, कोई प्रेम नहीं है इस जगत का। प्रेम एक समझौता है, मैं तुम्हें कुछ प्रदान करूं, तुम मुझे कुछ प्रदान करो, तब तक प्रेम चलेगा। जिस दिन प्रदान करना बंद कर दिया, प्रेम समाप्त। कंस को अपनी बहन बहुत प्रिय लग रही थी, बड़ा प्रेम दिखला रहा था कंस, हटा दिया सारथी को, अरे मेरी बहन जा रही है, उसका विवाह हुआ, मैं रथ चलाऊंगा। एक राजा होते हुए सारथी बनना अच्छी बात नहीं है, तो बड़ी निम्न स्तर का कार्य है, लेकिन सारथी मैं बनूंगा, मेरी बहन जा रही, कितना प्रेम दर्शा रहा। लेकिन जैसे ही इंद्र तृप्ति में बाधा आई, मूर्ख कंस, ये आठवां पुत्र देवकी का तुम्हारी हत्या करेगा, तलवार निकल गई, पकड़ लिए बाल की, अभी सर काट देता हूं। कहां गया वो प्रेम जिसके लिए सारथी बनने के लिए तैयार थे, कहां गई मेरी बहन, तलवार निकल गई। ये इस जगत का प्रेम है। तो इसीलिए अंधा है प्रेम। किससे अंधा हो गया है? इंद्रिय तृप्ति की भावना से अंधा हो गया। इसलिए प्रेम नहीं है, काम है, वासनाएं हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के लिए जब हम कार्य करते हैं, वो सच्चा प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नहीं है, वो अज्ञान पर आधारित नहीं है, वो परम सत्य से संबंधित है, पूर्ण शुद्ध से संबंधित है, इसीलिए वो शुद्ध है। जो भी चीज भगवान से संबंधित है वो पूर्ण शुद्ध है। तो ऐसे भरत महाराज ने जब देखा कि वो नहीं है, तो बड़ा विलाप करने लगे, ऐसे पागलपन में ऐसी बातें करने लगे कि कहाँ चला गया, क्या हो गया, हाय हाय, किसी हिंसक प्राणी ने तो नहीं खा लिया। चंद्रमा की ओर देखा कि हे चंद्रमा, तुम रक्षा करना। बताइए सब क्या, अगर कोई पढ़े, एक क्या हुआ, एक हिरण का बच्चा चला गया। अब उसको अच्छा नहीं लगा भरत महाराज के साथ रहना। भरत महाराज ने बहुत प्रेम दिखलाया था, गोद में बिठाया करते थे, उसको चूमा करते थे, ये सब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। बहुत बहुत प्रेम दिखलाया, चला गया। उसके लिए इतना विलाप, चंद्रमा को कह रहे कि हे चंद्रमा, अपनी किरणों को दर्शाते हुए उसको लेकर आना आश्रम में मेरे, इत्यादि इत्यादि। तो जब ऐसी अवस्था में पहुंच गए, तो भक्ति की दृष्टि से हम लोग देखें कि जब हम नियमों का पालन नहीं करते, आसक्ति बढ़ जाती है बहुत ज्यादा हमारी। तो भरत महाराज ने सब छोड़ दिया, भगवान का जप करना, भगवान की पूजा करना, ये सारा छूट गया उनका। किस लिए? एक हिरण के बच्चे के लिए। एक तरफ सारे राज्य सब संपत्ति को छोड़ के आए थे भगवान के लिए, और अब भगवान को छोड़ दिया एक हिरण के बच्चे के लिए। सावधान रहना चाहिए। हम लोग सब भक्ति करने आते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम भी ऐसे ही हिरण के बच्चे के लिए भगवान को त्याग देते हैं। कुछ मान प्रतिष्ठा, ये हिरण का बच्चा है, उसके लिए हम भगवान को त्याग देते हैं। थोड़ी बहुत भोग की कामना, हिरण का बच्चा है, उसके लिए हम भगवान को त्याग देते हैं, भक्ति को त्याग देते हैं, भक्ति के मार्ग को त्याग देते हैं, भोगों में पड़कर, मान प्रतिष्ठा के लिए, कुछ धन की प्राप्ति के लिए। कभी कभी लोग धन की प्राप्ति के लिए भगवान के मार्ग को त्याग देते हैं, भक्ति के मार्ग को, या फिर कुछ कष्टों के लिए। ये सारी चीजें, ये आसक्तियां हैं। तो इस आसक्ति में ना पड़े हम लोग, हिरण के बच्चे हैं ये सब। भरत महाराज के पास एक था, हमारे पास बहुत है, मान प्रतिष्ठा की कामना, अहंकार, भोग प्रवृत्ति, हमारे पास बहुत सारे हैं, और इनमें पढ़कर हम भगवान को भूल जाते हैं, जिस उद्देश्य के लिए भक्ति में आए हैं उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए भरत महाराज के उदाहरण से हमें ये सीखना कि कैसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और फिर भरत महाराज जब ऐसे सोचते रहे, विलाप करते रहे, बहुत ज्यादा उनको ढूंढने लगे, अलग अलग जगह पर दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया, शेर ने तो नहीं खा लिया, किसी और हिंसक प्राणी ने नहीं खा लिया, भालुओं ने नहीं खा लिया, सबका स्मरण कर रहे हैं भरत महाराज कि अब क्या होगा, मेरी जिम्मेदारी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया, हाय हाय, ऐसे करते करते ढूंढते ढूंढते गड्ढे में गिर पड़े। उनकी मृत्यु का समय आ गया, और उस समय भी स्मरण कर रहे थे उसी हिरण का कि हाय हाय कहाँ गया कहाँ गया। और जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव में हम देह छोड़ते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम, जिसका स्मरण करके हम देह छोड़ते हैं, वैसा ही देह हमें मिलता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल भी लोग अपने कुत्ते बिल्लियों से बड़े आसक्त रहते हैं, बहुत आसक्ति होती है और अपने कुत्ते बिल्लियों का स्मरण करके देह छोड़ते हैं, स्वाभाविक अगला जीवन उन्हें क्या मिलेगा। तो भरत महाराज ने उसका स्मरण कर रहे हैं इस समय। तो देखिए हमारी सारी भक्ति की, जो हम जीवन भर भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद एक बंगाली कहावत कहा करते थे कि जो भी दिन जीवन में कर रहे हैं मृत्यु के समय पता चलेगा क्या है, मतलब मृत्यु हमारी परीक्षा है। तो भरत महाराज ने भले बहुत अच्छा राज्य किया, बहुत से यज्ञ किए, उसके बाद भगवान की भक्ति की, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अंत में क्या, जब परीक्षा का समय आया, मृत्यु का समय, तो हिरण का स्मरण किया। तो हमारे लिए चेतावनी है कि हमें ये जान लेना है कि अंत समय में हमें किसी हिरण के बच्चे का स्मरण नहीं आए। मान प्रतिष्ठा, धन, स्त्री, ये सारी चीजें नहीं आए, इसके लिए अभ्यास कीजिए अभी से। तो भरत महाराज उस समय स्मरण करने लगे और स्मरण करते करते उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, इसीलिए अगला जीवन उन्हें एक हिरण के बच्चे के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो कितनी महत्वपूर्ण बात, कितने महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रसंग में है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे भक्ति करें। जरा भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ट्रकों के पीछे लिखा होता है, असावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये हमें रोज याद कर लेना चाहिए। भक्ति में अगर हमारी असावधानी, सावधानी हटी, अगर सावधान नहीं रहे तो दुर्घटना घटी, निश्चित होने वाला। और प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कि कृष्ण एक या दो बार आपको माफ कर सकते हैं, एक या दो बार, उससे ज्यादा कृष्ण के लिए भी माफ करना कठिन हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं, मतलब एक आध दुर्घटना हो गई तो कृष्ण संभाल लेंगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, गाड़ी जरा धीरे चलाया करो, बहुत तेज चला रहे हो, एक दो थप्पड़ मार देंगे ठीक हो जाएगा, फिर भी चलो। लेकिन उससे ज्यादा प्रभुपाद लिखते हैं एक या दो बार, बहुत स्पष्ट लिखा प्रभुपाद, वन और टू टाइम कृष्णा कैन सेव यू, बट आफ्टर दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट इवन फॉर कृष्णा टू सेव। उसके बाद कृष्ण भी नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? सुखदेव गोस्वामी इसमें कहते बहुत सुंदर बात कि भरत महाराज को यह आसक्ति क्यों हुई, उस व्यक्ति को जो सब कुछ छोड़ चुका था भगवान के लिए, जो भक्ति कर रहा था, वन में चला गया था, उसको कैसे आसक्ति हो सकती है? ये क्या तरीका है भगवान का, जो सब कुछ आपके लिए त्याग दे उसके हृदय में आप आसक्ति ले आते हो, तो क्यों हुई? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके पूर्व जन्मों में किए गए या पूर्व भक्ति से पहले किए गए कार्यों का फल है, जो उन्होंने सकाम कर्म किए उसके कारण है। तो प्रभुपाद एक प्रश्न पूछते हैं तात्पर्य में, भक्त के लिए सकाम कर्म कैसा? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजां। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाजां, भक्ति भजन में लगा है, तो निर्दहति, उसके लिए तो कर्माणि निर्दहति, सारे कर्म चले गए। तो जब कर्म चले गए तो उसका प्रभाव कैसे, और वो भी भरत महाराज को? तो प्रभुपाद कहते हैं एक ही चीज हो सकती है, जानबूझकर उन्होंने भक्ति के मार्ग को ध्यान नहीं दिया, जानबूझकर। और इसीलिए तो मतलब अगर हम लोग जानते हुए भी समझ रहे हैं कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, फिर भी अगर हम चलते रहें, तो फिर निश्चित है कि ये हमारे लिए भी पतन का मार्ग होगा। तो वैसे भक्त के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजां। लेकिन फिर भी अगर हम जान बूझ के कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि भगवान चाहेंगे तभी मृत्यु होगी, तो ठीक है वो तो सही बात है, तो मैं ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो जानबूझकर नहीं करना चाहिए। तो ये जानबूझकर भक्ति के पथ से दूर नहीं जाना चाहिए कि भगवान लाएंगे मुझे वापस। क्यों लाएंगे? अभी एक बार ले आए, आप फिर जा रहे हो तो क्यों लेकर आए? खैर, भगवान लाते हैं। तो ऐसे भरत महाराज हिरण के बच्चे के विषय में सोचते सोचते अपना देह त्यागते हैं और फिर एक हिरण के बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन अब जो हम कारण बता रहे थे भरत महाराज के पतन का, भगवान कहते हैं नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और ये भगवान ने दिखलाया, एक हिरण के शरीर में जाकर भी, एक पशु के शरीर में जाकर भी उनको स्मरण था मेरे पूर्व जन्म का, कि मैंने क्या गलती की। तो उस समय भरत महाराज हिरण के शरीर में ये पश्चाताप करते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, इतना मैं अच्छी भक्ति कर रहा था, आराम से भगवान को प्राप्त कर लेता, लेकिन एक हिरण के प्रति आसक्त हो गया। तो तुरंत उन्होंने अपनी माँ का वो स्थान छोड़ दिया जहां उनका जन्म हुआ था, एक पर्वत पर, और पुलह आश्रम में आ गए वापस जहां पर पहले थे, और अब ऋषि मुनियों के साथ रहने लगे। और ऐसे ऋषि मुनियों के साथ रहते हुए वो स्मरण करने लगे अपनी गलती का कि कैसे मैंने किया था। देखिए भगवान ये करते हैं, जैसे गजेंद्र, जब गजेंद्र कष्ट में था तो याद क्या आया उसको, भगवान ने क्या याद दिलाया, पूर्व जन्म में की हुई प्रार्थनाएं, और उसने उनको दोहराया। तो पशु के शरीर में भी जाकर अगर जीव भगवान की भक्ति को याद रख सकता है, भगवान को याद रख सकता है, तो फिर अगर हमें मनुष्य शरीर मिलेगा तो क्यों नहीं हम आगे भक्ति करेंगे। तो इसीलिए हिरण के शरीर में भी भरत महाराज फिर प्रार्थना करते थे और हमेशा अलग रहते थे। ज़्यादा उन्होंने किसी से अन्य हिरणों को बताया नहीं कि मेरे पूर्व जन्म में मैं क्या था, क्या गलती की। चुपचाप एकांत में भक्तों का संग, जहाँ ऋषि मुनि वहाँ बैठ कर कथा सुनना। तो पुलह आश्रम में वो रहे और उन्होंने भक्ति की और बार बार अपनी गलती को स्मरण करके कि अब वो गलती नहीं करें, भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। उस हिरण के शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। तो अब अगले अध्याय से महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि जब उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया हिरण के रूप में तो क्या हुआ। क्योंकि साधारणता तो ये होना चाहिए कि जिन्हें भगवान का स्मरण आ गया और हमेशा स्मरण कर रहे हैं और मृत्यु के समय भी भगवान का वो स्मरण करते हुए उन्होंने छोड़ा, तो उन्हें मुक्त होना चाहिए, प्लेन आना चाहिए था, ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा। तो क्यों लेना पड़ा जन्म उन्हें और फिर जन्म लेके उन्होंने क्या किया, ये अगले अध्याय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा? यस।
हरे कृष्णा।
एक दृष्टि से देखा जाए तो भले हिरण का मिला हो, चेतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और वो भक्ति कर सकेंगे, इसका अर्थ है कि उनकी चेतना वैसी ही बनी रहेगी, अर्थात वो भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा मनुष्य शरीर मिलकर भी क्या लाभ है अगर वो भक्ति नहीं कर पाए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भरत महाराज को जो हुआ और आगे भी जो हम देखेंगे कि क्यों उन्हें और एक शरीर लेना पड़ा, उसके कारण तो भगवान की कृपा थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भगवान इससे संदेश भी देना चाहते थे कि अगर हम बहुत असावधान हो गए, अगर हमने भक्ति की सारी क्रियाओं को त्याग दिया, भक्ति बनी रहेगी लेकिन हो सकता है कि हमें पशु शरीर में जाना पड़े, अगर हमारे कार्य इतने निंदनीय हो गए तो हो सकता है कि हमें पशु शरीर में जाना पड़े। तो इसीलिए भक्ति करते रहने वाले के लिए मनुष्य शरीर है, लेकिन भरत महाराज ने तो त्याग दिया था सारी चीज़ों को। तो इसीलिए ये हमारे लिए चेतावनी है कि हमें जीवन भर, जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान की भक्ति करनी है। तो इन दृष्टि से, लेकिन मूल बात यह है कि उन्होंने उनकी चेतना को बनाए रखा। तो भगवान उस चेतना को बनाए रखते हैं जिससे जिस भी घर में वो जन्म लेता है फिर वहाँ से आगे वो भक्ति कर पाता है, तो वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का पीछे है? हरे कृष्णा। अष्ट सात्विक विकार क्या है, ये पूछ रहे हैं? जिस दिन आपको आएंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा अष्ट सात्विक विकार क्या है। अष्ट सात्विक विकार एक बहुत उच्च कोटि के भक्त के शरीर में प्रकट होते हैं जब वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसको अपने चेतना का ध्यान नहीं होता है, तो अलग अलग होता है, उसकी आँखों से अश्रु आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में कंपन होती है, स्तब्ध हो जाता है इत्यादि, पसीना आता है। ऑफकोर्स पसीना सबको आता है, इसका मतलब वो अष्ट सात्विक विकार नहीं है। कल को बोलेंगे ये पसीना है अष्ट सात्विक विकार है, तो ऐसे नहीं है। इसका कारण ये होता है कि भक्ति में बहुत वो आगे बढ़ा होता है, इसीलिए अपनी चेतना को भार भूल जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए वो मूर्छित हो गए। तो ये मूर्छा ये अष्ट सात्विक विकारों में से एक विकार है, तो मूर्छित होकर गिर पड़े और सबने सोचा कि अरे शायद धूप के कारण, बहुत धूप जगन्नाथपुरी में वैसे भी धूप होती है तो धूप के कारण, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं नहीं ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो इसलिए उनको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं कि शरीर में विकार यानी शरीर में कोई बदलाव आना, लेकिन सात्विक मतलब अच्छे कार्य के लिए, अच्छी भक्ति की दृष्टि से। वैसे तो हमारे शरीर में विकार आते ही रहते हैं, पसीना आता रहता है, कंपन आती है, किसी को बुखार हो जाए 104 डिग्री वो कांपने लगता है, रात को रात भर कांपता है, तो वो कोई अष्ट सात्विक विकार नहीं है। तो सात्विक मतलब सत, सत अर्थात भगवान से संबंधित होने पर जो शरीर में बदलाव होते हैं उसको सात्विक विकार कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी,
दो बार जिन्हें लिखा है कि एक से दो बार गलती होने पर उनको
क्षमा करने
में कठिनाई होती है, जगाई मनाई इतनी सारी गलती की थी फिर उनको भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, क्षमा कर दिया।
पहली चीज, जगाई मगराई भक्ति में नहीं थे, ये जो प्रभुपाद ने कहा ये उनके लिए कहा जो भक्ति में हैं और कुछ गलती कर बैठते हैं, तो भगवान एक या दो बार क्षमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनके लिए कठिन हो जाएगा। तो जगाई मगराई कोई महान भक्त नहीं थे, वैष्णव नहीं थे उस समय जब वो अपराध कर रहे थे। पहला कारण ये है कि जब भी प्रभुपाद ने जो ये कहा वो भक्तों के लिए कहा है। जैसे भक्ति में हम होते, हमसे कोई अपराध हो जाता है, हमारी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते या कुछ और बड़े अपराध हम लोग कर बैठते, तो वो भगवान एक या दो बार माफ़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पापियों के लिए नहीं कहा है, उनके लिए तो क्या कितना करेगा, अभी देखिए दुनिया में कितने पाप हो रहे हैं, भगवान किसको माफ़ कर रहे हैं ना। तो पापियों के लिए कर्म का नियम है, भक्तों के लिए अपराध का नियम है। जब तक हम भक्ति में नहीं आते जो करते हैं वो पाप की श्रेणी में आता है, भक्ति में आने के बाद जो करते हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो प्रभुपाद ने जो कहा ये अपराध के लिए कहा, पाप के लिए नहीं। ठीक है, दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही इसीलिए हुआ था बताने के लिए कि महावदन्याय, तो चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, उनको औदार्य, उनका धाम औदार्य धाम कहलाता है, यानी उदारता में वो सबसे आगे है। तो वो इसीलिए जो भी पापी हो वो उसको उद्धार कर देंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भक्ति में रहकर पाप करते रहें और फिर महाप्रभु, प्रभुपाद कहते थे जैसे सोमवार से शनिवार तक आप अपराध करो, फिर संडे को जाके भगवान मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है जीसस ने तुम्हें माफ़ किया, ओके अगले दिन से फिर चलो, तो वो ठीक नहीं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी जब उनको क्षमा किया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अब अपराध नहीं करना आगे से, एक बार मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, सारे अपराध क्षमा कर दिए, बहुत स्पष्ट कहा महाप्रभु ने अब इसके बाद नहीं करना। तो जो भी अपराध किए थे उनको उन्होंने क्षमा कर दिया। उनका अपराध क्या था? उससे पहले तो जो कर रहे थे वो पाप थे, पापों को ध्यान नहीं दिया। अपराध क्या था? नित्यानंद प्रभु के प्रति उन्होंने अपराध किया था, तो वो बहुत बड़ा अपराध था, तो उसको भगवान ने क्षमा कर दिया, वो भी नित्यानंद प्रभु के कहने पर। नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए कि नहीं आप क्षमा कीजिए, करना पड़ा। लेकिन उस समय बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा कि बस अब इसके बाद नहीं, इसके बाद करोगे तो क्षमा नहीं होगी। तो वहां भी यही कहा चैतन्य महाप्रभु ने, एक बार किया है लेकिन अब अपराध नहीं करना। तो हमें यह जानना चाहिए कि भक्ति में आने का अर्थ है कि भगवान ने हमारे सारे पाप जो जगाई मधाई की तरह हमने किए थे वो क्षमा कर दिए, भगवान ने निकाल दिए सारे, लेकिन अब नहीं करना। अगर अब किया तो फिर दंड मिले, अगर जगाई मधाई ने उसके बाद किया होता तो फिर चैतन्य महाप्रभु शायद दंड दे देते, ठीक है। तो आप अब मत कीजिएगा।
ज्ञान में रहकर अपराध करने का दंड और अज्ञान दोनों का दंड बराबर होता है या?
ज्ञान में अपराध करने का दंड ज्यादा कठोर होता है। जैसे एक बच्चा कोई अपराध करता है तो उसको ज्यादा दंड नहीं, वो हत्या भी कर देता है तो उसको मारा नहीं जाता है। भारत में नियम है अगर 18 साल से नीचे का बच्चा है वो हत्या भी कर देता है किसी की तो उसको मारा नहीं जाता, उसको फांसी की सजा नहीं दी जाती, उसको एक जगह रखा जाता है सुधारने के लिए इत्यादि। लेकिन अगर कोई बड़ा कर देता है तो उसको तुरंत सजा मिलती है। यही है, क्योंकि बच्चा ज्ञान में है और जो बड़े व्यक्ति हैं वो ज्ञान में है, तो ज्ञान में करने वाले को सदैव ज़्यादा दंड मिलता है। जानबूझकर जो करता है कि सब जानता है क्या नहीं, वो जब करता है तो दंड ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन कोई अज्ञान में कर देता है तो भगवान ध्यान नहीं देते, अज्ञानी है क्या कर, हो गया, ठीक है। जलता वो भी है, कष्ट उसको भी होता है। जैसे अग्नि में आप ज्ञान में डालो हाथ या अज्ञान में डालो, अग्नि जलाती है। लेकिन भगवान ये देखते हैं कि इस व्यक्ति को ज्ञान है, ये सब जानता है, करते हुए उसने, जैसे कोर्ट जो होती है वो क्या देखती है, ये बड़ा व्यक्ति इसको सब पता है। छोटा बच्चा समझिए 10 साल का बच्चा 8 साल का कुछ कर देता है, कोर्ट उसको सजा नहीं देती, हाँ उसको कहीं भेज देती है, रिमांड होम बोलते हैं उसको, वहाँ जाकर उसको थोड़ा सुधारा जाता है इत्यादि, लेकिन कभी उसको फांसी की सजा नहीं होगी किसी 10-20 साल के बच्चे को, कानून में लिखा है, संविधान में नहीं हो सकती। लेकिन बड़ा करता है तो होती, तो इसीलिए अगर हम ज्ञान में रहकर करते हैं तो सजा बड़ी होगी, अज्ञान में कुछ हो जाए तो उतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती, ठीक है। इसका और एक उदाहरण है, मांडुक्य मुनि, वो एक बार बैठे थे अपने आश्रम में, कुछ चोर आए, वो राजा का सामान चुरा कर ला रहे थे, उन्होंने इनके आश्रम में रख दिया और छुप गए। तो पीछे पीछे सैनिक आए, उन्होंने देखा है सारा सामान इधर पड़ा हुआ है, ये भी चोर है, चलो इसको भी उठा के लेके चलो। तो चोरों को भी ले गए, मांडुक्य मुनि को भी उठा के ले गए। तो राजा से उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी ऋषि को पकड़ा है, उन्होंने कहा हमने चोरों को पकड़ा है। राजा ने कहा चढ़ा दो सूली पर सबको। तो उस समय सूली पर चढ़ाना मतलब ये हम लोग बहुत सोचते हैं कि गले में फांसी का, वो नहीं था, शूल होता था। शूल यानी ऐसा त्रिकोण, बहुत शार्प लोहा होता था, तो उसके ऊपर बिठा दिया जाता था और दबा देते थे, तो शूली पर चढ़ाना उसको कहते थे। पूरा व्यक्ति के हृदय सब जीवन खराब, पूरा निश्चित मरेगा, ये तो फांसी लगना बात का बात है, तो शूली पर। तो राजा ने कहा चढ़ा दो, वो चढ़ा दिया गया, और जब चढ़ाया उनको भी चढ़ा दिया। तो खैर राजा को पता चला, राजा आए, क्षमा मांगी कि ये क्या हो गया, एक ऋषि को कर रहे हैं। तो ऋषि ने उनको श्राप नहीं दिया, वो गए सीधे यमराज के पास। तो यमराज से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा फल क्यों दिया, मैं तो भक्ति कर रहा था, मुझे क्यों ये शूल मेरे शरीर में क्यों प्रवेश किया। तो यमराज ने कहा कि जब आप छोटे थे तब आपने एक कीड़े के शरीर में एक थॉर्न कांटा घुसा दिया था, तो इसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर में घुसा। तो ना बहुत गुस्सा हो गया मांडव्य मुनि, उन्होंने कहा, उन्होंने नियम बना दिया कि आज के बाद बच्चे जो करें उनको ये नहीं दे सकते दंड। तो बच्चा था मैं, मुझे क्या पता, जानबूझ के थोड़ी किया था, फिर आपने कैसे दंड दिया। तो फिर उन्होंने उनको श्राप भी दिया, शूद्र हो जाओ जाकर, इसीलिए वो विदुर बने आकर। और साथ साथ उन्होंने ये भी नियम बताया कि आज के बाद कभी बच्चों को ये दंड नहीं मिल सकता। तो इसी तरह जब हम अज्ञान और ज्ञानी, तो हमें दंड मिलेगा अगर हम ज्ञान में अपराध करें, ठीक है। हाँ जी, आगे लाइए माइक।
हरे कृष्ण।
भरत महाराज के अंदर अहंकार आ गया था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को आश्रय प्रदाता माना कि इसको मैं ही केवल आश्रय देने वाला हूं। ये अहंकार है, उन्हें ये अहंकार भले ना आया हो कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बहुत शक्तिशाली इत्यादि, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि मैं ही आश्रय दे सकता हूं, यही अहंकार है ना। तो ये अहंकार उनके अंदर आ गया कि नहीं तो उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि कृष्ण रक्षा करेंगे, और अगर कृष्ण मारना चाहते तो मारे, फिर क्या कर सकते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये उनको जानना चाहिए था कि अगर हिरण का बच्चा चला गया और अगर मर भी जाता है तो ठीक है, कृष्ण की इच्छा है, मैंने अपना कर्तव्य किया, उसके आगे मेरा कोई। लेकिन वो तो ये सोचे थे कि मैं ही आश्रय प्रदाता हूँ, ये अहंकार था उनका। तो ये अहंकार उनके हृदय में आ गया था, इसी कारण पतन हुआ। वैसे वो भाव स्तर के भक्त हैं, हमने इसीलिए पहले बताया कि भगवान ने उनका उपयोग किया हमें ये समझाने के लिए, संदेश देने के लिए। भगवान उपयोग करते हैं अपने भक्तों का, जैसे अर्जुन का उपयोग किया। अर्जुन कैसे मोह में आ सकता है बताइए, जो कृष्ण के साथ 24 घंटे रह रहा है वो मोह में आ जाएगा, जो कृष्ण को भगवान मानता है वो मोह में आ जाएगा, जो उनका सखा है नित्य सखा वो मोह में आ जाएगा, लेकिन वो आ गया। तो भगवान अपने भक्त का उपयोग करते हैं संदेश हमें देने के लिए। इसी तरह भरत महाराज के हृदय में अहंकार को लाए है ये बताने के लिए कि कैसे भक्त का पतन होता है, ठीक है। ओके, भगवान हमें क्या दंड देते हैं अगर हमें भक्ति में अपराध हो जाता है तो? सबसे पहला दंड, हमारी भक्ति में रुचि समाप्त हो जाती है, ये बहुत बड़ा दंड है। जो हमारी आज रुचि है भगवान के नाम लेने में, थोड़ी बहुत जो भी है, तो वो रुचि को पहले समाप्त होने लगती है, अपराध के कारण रुचि कम होने लगती है। तो ये पहला दंड है भगवान, दंड भी भगवान इंस्टॉलमेंट में देते हैं, पूरा एक साथ नहीं देते, क्योंकि जानते हैं भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो पूरा दंड दे दूंगा तो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट है, रुचि समाप्त हो जाती है अपराध के कारण। दूसरा, फिर धीरे धीरे हम भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि रुचि नहीं है अभी जब करने में, भक्ति करने में, तो फिर भक्तों के महत्व को कम समझने लगते हैं, क्योंकि भक्तों के महत्व को तो एक भक्त ही जान सकता है, अन्य कोई व्यक्ति भक्तों के महत्व को नहीं समझता। उन्हें साधारण व्यक्ति मानते हैं, ठीक है थोड़ा 10-15 साल 20 साल से कुछ कर रहा है बस, और क्या, कौन सा बड़ा बात है। तो भक्तों के महत्व को कम कर देते हैं, भक्तों के संग से चले जाते हैं दूर, और फिर स्वाभाविक है कि फिर हमें भौतिक कष्ट सताने लगते हैं, और फिर उन भौतिक कष्टों के द्वारा भगवान हमें पुनः स्मरण कराते हैं कि आप भक्ति कर रहे थे, वापस आइए, और फिर भगवान वापस लाते हैं। तो दंड भी देते हैं लेकिन घुमा फिरा के वापस भी ले आते हैं, जैसे भरत महाराज को दंड दिया लेकिन फिर वापस लेकर आ गए, ठीक है, ये कृपा है भगवान की। और कोई प्रश्न किसी का? यस Yes, with the story, this pastime of Bharat Maharaj, we can understand that how dangerous it is for us to get attached to any person. Yes, we should be attached to devotees, but not on the bodily platform, not to one particular person, because that attachment is not devotional attachment. Like we are all attached to devotees, we are all attached to each other. We want to see each other, we want to be with each other, just because we can do bhakti together. So there is no harm. But when you get attached to a person, one particular person, that means our attachment is not spiritual, it's material. You are not getting attached to that person seeing his devotional qualities. You are not getting attached to that person seeing his advancement in devotion. But you are attached to him seeing him some material qualities. So this material quality attachment will definitely be a cause of fall down. So how to avoid it? Okay, we have some attachment. Now how to avoid it? Various ways are there. Like if you want to remove your attachment to material things, you have to first of all increase your attachment to Krishna. Negative things can be taken out from the heart by pushing positive things inside. So we should try to increase our attachment to Krishna and his devotees for devotional service, not for any other reason. So the first thing we should do is that we try to increase our attachment. Second thing, be very strict in your sadhana. Because it is the sadhana that is your chanting and your hearing and your reading and your service, it's all part of your sadhana. So sadhana, it will give that strength to your mind to overcome that attachment, because material attachments are very strong. Like even devotees who are grahasthas, so they are attached to their wife, their children. You tell them anything, any philosophy, they hear all the philosophy, they hear everything daily, but then there is still attachment is there when it comes to wife and children. So that attachment is very strong. It can be taken off when you perform your sadhana very strongly. Because then your strong sadhana, your mind will become strong and you will be able to come out of that attachment. Of course, it doesn't mean only grahasthas are attached. Even brahmacharis, they get attached. Brahmacharis, they get attached to many things. Of course, very common is for brahmacharis is to get attached to some matajis. But apart from that, many things are there where they get attached to. They get attached to their service. If you change your services, we don't want. Why are you changing myself? They get attached to the place where they are staying. Okay, I'll stay here. They get attached to many things, you know. So, anyway, there are other people are here. I can't speak more on the attachment of brahmacharis. But yes, so brahmacharis, grahastha, vanaprastha, everyone gets attached. That's why we should keep our sadhana very strong. So somebody who is in grahastha ashram, somebody who is in brahmachari ashram, if they keep their sadhana very strong, then this slowly this attachment will go. So first of all, increase your attachment to Krishna through more hearing, through more serving, and then you keep your sadhana very strong. Don't be a lazy person in your sadhana. That will give you strength by which you will be able to overcome this attachment. And also, wherever you are, I mean, if it is too much, it's too overwhelming, you cannot control it, better leave that person or leave that place if it is too much for you. But that's the last resort. But if you are strong in your sadhana, if you are strong in your services, Krishna will definitely bestow mercy. Ultimately, what you can do is to pray to Krishna. Pray to Krishna that today I have this attachment. I wish the same strong attachment I could have for you. What attachment I have for this person. And Krishna can do that. So pray sincerely. Do your sadhana very strictly. Serve nicely. Serve in a humble mood. And this will definitely help you in coming out of that attachment. But it will take some time. Don't worry. Just continue. Is that okay? और कोई प्रश्न किसी का ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।
Thank you.